प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग पांचवा, लेक्चर नंबर 361। ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाऊणं, सुर असुर नरपति वंदने प्रविनष्टघाति कर्मणे प्रणमन करू धर्मकर्ता तीर्थ श्री महावीर ने परिशेष तीर्थंकर अनेश सिद्ध शुद्धास्तित्व ने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तप वीरा चरण संयुक्त ने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने वंदुवणि हो मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरहंतने सौसिद्धने नमस्करण करिए रीते गणधरने अध्यापकोने सर्वसाधु समूहने तसुशुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करू साम्यनि जेनाति शिव प्राप्ति बने।
आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य युक्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से ये पांचवी पुस्तक है प्रवचन सुधा भाग पांचवा, और हम उसमें पृष्ठ संख्या 53 पर आ गए, 53। ये पहला नया पैराग्राफ है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। गमे ते संयोग मा, गमे ते क्षेत्र मा, गमे ते काल मा होय, पण प्रत्येक द्रव्य पोताना द्रव्य गुण अने पर्याय मा छे। यहाँ द्रव्य गुण पर्याय की बात अपनी चल रही है, दूसरी भाषा में कहेंगे अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है। अब यहाँ कहेंगे अपने द्रव्य गुण और पर्याय में है। आप कहेंगे अपने द्रव्य में कहने से गुण पर्याय आ गए ने, आ गए, वो प्रदेश अभिन्न की अपेक्षा आ गए, परंतु यहाँ हम अन्यत्व जो है तद अभाव या तद भाव, इसलिए द्रव्य भी कहा, गुण भी कहा और पर्याय में पर्याय भी कहा। प्रत्येक द्रव्य कहने से प्रत्येक वस्तु पोताना द्रव्य गुण अने पर्याय में छे। यानी अभी हम ऐसा कहेंगे प्रत्येक द्रव्य ने, मैं स्वयं जीव द्रव्य हूँ तो मैं मेरे द्रव्य में हूँ, मैं मेरे ज्ञानादि अनंत गुण में हूँ और मैं अपने पर्याय में हूँ। इस तरह से जीव नारकी माँ छे कहूँ ए व्यवहार छे, क्या कहा, वो अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहता है, वो नारकी में रहता है, ये कहना ये तो व्यवहार कथन है। जीव देव माँ छे कहूँ व्यवहार छे, देवना क्षेत्र में वो स्वर्ग में गया नरक में गया, ये क्या है, व्यवहार कथन है। जीव तो जीव में है, ये वो यहाँ मनुष्य रूप से हो, देव रूप से हो, नारकी हो, कोई भी जो हो, जिस पर्याय में है वहाँ तो वो जीव द्रव्य ही है, वो अपने द्रव्य गुण और पर्याय में ही रहता है। आहा हा, श्रेणिक राजा नरक माँ छे एम कहूँ ए व्यवहार छे, પણ એની નારકીની ગતિની જે યોગ્યતા છે એ પર્યાયમાં છે. ક્યાં કહેતે વો જીવ કી પર્યાય, કૌન સી વો નારકી કી જો ઉસકી વો યોગ્યતા હૈ ઉસ સમય તો ઉસ પર્યાય મેં વો રહેતા હૈ. વો નરક મેં પરક્ષેત્ર મેં રહેતા હૈ કહેના તો યે તો વ્યવહાર હૈ, રિલેટિવ હૈ કે નરક મેં હૈ, પહેલે નરક મેં હૈ. વો કિસમેં હૈ? વો નારકી જૈસે ઉસકે અપને ભાવ ચલ રહે ને, હા ઉસ ભાવ મેં. હમ યહાં મનુષ્ય મેં, હમ ભારત મેં રહેતે, વો કહેના ક્યા હૈ? ઉપચાર હૈ, વ્યવહાર કથન હૈ. તો હમ કિસમેં હૈ? હમારે ગુણ મેં, હમારે પર્યાય. જો મનુષ્ય પર્યાય કિસકી? જીવ કી હો? એ અસમાન જાતિ વાલી નહીં. અસમાન જાતિ પર્યાય મેં જીવ કો ભી લિયા ઓર પુદગલ કો ભી હૈ. યહાં અકેલે જીવ કી મનુષ્ય પર્યાય લેના હૈ, ક્યોંકિ ઉસકે ભી ગતિ ઔદયિક ભાવ કે અનુસાર ઉસકે જો વહાં ભાવ ચલતે હૈ, પર્યાય જો ચલ રહી હૈ ઉસકો લેના હૈ. તો જીવ અપની ઉસ પર્યાય મેં ઉસ સમય રહેતા હૈ, યે કહે રહે. ફિર સે પડતે દેખો, શ્રેણિક રાજા નરકમાં છે એમ કહેવું એ વ્યવહાર છે, પણ એની નારકીની ગતિની જે યોગ્યતા છે એ પર્યાયમાં એ છે, પણ એ ગુણમાં નથી અને એ દ્રવ્યમાં નથી. જે પર્યાયમાં છે તે ગુણમાં નથી. એને વો શ્રેણિક રાજા દ્રવ્યમાં નહીં ગુણમાં નહીં છે ને, જબ વો પર્યાય હૈ વો પર્યાય ગુણમાં નહીં હૈ, પર્યાય દ્રવ્યમાં નહીં. ક્યું? વો તો ઉસમે અતદ ભાવ હૈ. હરેક કા પર્યાય કા ભાવ જુદા, ગુણ કા ભાવ જુદા, દ્રવ્ય કા ભાવ જુદા. યહાં લિખા ને, જે પર્યાયમાં છે તે ગુણમાં નથી અને તે દ્રવ્યમાં નથી. એ અપેક્ષા બરાબર સમજના આવું છે. ઘણા એમ કહે છે ને કે શ્રેણિક રાજા નરકે ગયા, સમકીતી છે, શાયિક સમકીતી, તીર્થંકર ગોત્ર બાંધ્યું છે, હવે એ તો પૂર્વનું આયુષ્ય બંધાઈ ગયું. ક્યાં કહેતે હૈ? જબ મુનિરાજ કે ઉપર ઉન્હોને ઉપસર્ગ ક્યા થા, યશોધર મુનિરાજ કે ગલે મેં વો મરા સર્પ ડાલા થા ના, ક્યોંકિ વો ચાહતે થે કોઈ દિગંબર મુનિ નહીં રહે, યાને ઇતના તીવ્ર ઉનકે પ્રતિ નફરત દ્વેષ થા, ક્યોંકિ ગૃહિત મિથ્યા દૃષ્ટિ તો થઈ થે. તો તભી સાતવે નરક કી આયુ બંધી, ઉસકે બાદ વો સમય દૃષ્ટિ હો ગઈ, શાયિક સમય દૃષ્ટિ હોય, તીર્થંકર પ્રકૃતિ ભી બાંધી. અબ વો શાયિક સમ્યક કે સાથ કાયમ રહેંગે, અબ નરક મેં ગયે, પહેલે નરક મેં ગયે. એ કહેતે પૂર્વનું આયુષ્ય બંધાઈ ગયું. જબ નરકાયુ બંધ, કોઈ ભી જો આયુ બનતી હૈ તો આયુ એક બાર જો બનતી હૈ ઉસમે કોઈ ચેન્જ નહીં હોતા. હા, વો આયુ મેં કટૌતી હો સકતી હૈ, બઢોતરી હો સકતી હૈ. બઢોતરી કબ હોગી? જબ દુબારા ઓર આયુ કા બંધ કા અવસર આયેગા તો. ઓર કટૌતી મેં એસી કોઈ જરૂરત નહીં. વો બાકી આયુ બંધને કે બાદ જો પરિણામ હોતે ઉસકે કારણ બંધી હુઈ આયુ મેં કટૌતી હો સકતી હૈ. જીસકો ઘાતાયુષ્ક કહેતે હૈ, ઉસી ભાવ મેં, જીસ ભાવ મેં બાંધી હૈ ઉસી ભાવ મેં. તો પૂર્વનું આયુષ્ય બંધાઈ ગયું એને લઈને નરકમાં ગયા. તો કહેતે વો ઉસકે કર્મ કે કારણ ગયે એસા ભી નહીં હૈ, એસા કહેંગે? અપની યોગ્યતા એસે ગયે. અહીં ના પાડે છે કે આયુષ્ય કર્મની પર્યાયમાં આયુષ્ય પર્યાય હતી, અહીં જવાને માટે જે આમ પર્યાય હતી એ પોતાની પર્યાયથી ત્યાં ગતિ કરે છે. પણ કહેને મેં હમ ક્યાં કહેંગે? વો આયુ બાંધી હૈ, નરક ગતિ કા ઉદય હુઆ હૈ, વો અભી નરક મેં ગયે હૈ. આયુષ્ય કર્મ તો નિમિત્ત માત્ર છે, એ નિમિત્તથી આમાં કાંઈ થતું નથી. વો નિમિત્ત હૈ, પરંતુ નિમિત્તને વો નિમિત્ત ઉનકો લે ગયા એ બાત નહીં હૈ. હમ કહેંગે ઇસને કર્મ બાંધે ઓર યહાં જાતે સમય કર્મ ઓર તેજસ શરીર ઓર કારમાન શરીર કો લેકે જાયેગા, યે વ્યવહાર કથન હૈ. ક્યોંકિ વો જો પરમાણુ જાયેંગે અપની યોગ્યતા સે. હા, જીવ કે ઉનકે એક ક્ષેત્રાવગાહ હૈ, વો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ બના હૈ, વો જીવ કે કર્મ કહેંગે હમ. જીવ ગયા તો ઉસકે કર્મ ઉસકે સાથ જાયેંગે એસા કહેંગે ભી હમ. પરંતુ વહાં યે સમજના હૈ કે ઉસમે એક એક પરમાણુ કી અપની યોગ્યતા જુદી જુદી. વો અપની યોગ્યતા સે ગયે, જીવ અપની યોગ્યતા સે ગયા. યે મૂળ બાત હમકો સમજની હૈ. કથન મેં તો નિમિત્ત સે કથન હોગા, ક્યોંકિ શાસ્ત્ર મેં શાસ્ત્ર કે સારે કથન હૈ કે જીવને કર્મ બાંધે વો નરકાયુ ઉસકો અભી નરક મેં લે ગયા, યા નરક ગત્યાનુપૂર્વી ઉસકો ભી કહેતે વો ક્ષેત્ર વિપાકી હૈ તો વિગ્રહ ગતિ મેં વો કામ કરતા હૈ વો લે ગયા, એસા ભી કહેને કી પદ્ધતિ હૈ.
મેરા એક હા પ્રશ્ન હૈ.
બિલકુલ.
વો પ્રશ્ન એસા કે અભી આપને ઘાતાયુષ કી બાત કી, તો ઘાતાયુષ્ક જો હૈ વો ભુજ્યમાન આયુ મેં હી હોગા યા બધ્યમાન આયુ મેં ભી હોગા?
માત્ર બધ્યમાન મેં હોતા હૈ, પણ વો બધ્યમાન યાને દેખો દેખો गुज्जमान का अर्थ क्या है, जो हमारी अभी हमारी वर्तमान में मनुष्य आयु चल रही है, उसका उदय चल रहा है, तो वो हमारी गुज्जमान आयु हम भोग रहे हैं उसको, यानी उसको उसका उदय चल रहा है। अब इस भव में हमने बांधी नेक्स्ट देवायु बांधी हमसे, अब वो देवायु बांधने के बाद, आयु बंधने के बाद अगर परिणाम खोटे हुए हमारी भाषा में कहेंगे, तो वो बांधी हुई मान लेते हैं ना कि दो सागर की आयु बांधी और कम होकर सागर की रहेगी, तो क्या कहेंगे, घात किया उसने, यानी किसमें घात हुआ, बद्धायु में घात हुआ, बांधी जिस भव में उसी भव में उसने घात किया,
जैसे श्रेणिक राजा ने की,
जैसे श्रेणिक राजा ने नरकायु बांधी थी 33 सागर की, और फिर समय दृष्टि हुए, एक शायक हुए, तीर्थंकर गोत्र बांधा, तो पहले नरक की मिनिमम आयु रह गई, वो 10,000 वर्ष नहीं हो सकती है, समय दृष्टि के लिए मिनिमम 84,000 वर्ष ही है, उतनी उन्होंने कर दी।
तो ऐसा भी कहते हैं ना,
हाँ,
कि कोई 20-22 साल का लड़का है एयर क्रैश में मर जावे, तो उसकी जो उसने समझो 80 साल की आयु बांधी है, लेकिन वो 20 साल में ही मरेगा, तो उसको क्या,
उसकी गुज्जमान आयु कट जाऊ,
उसको क्या,
कदली घात, यानी जो आयु भोग रहे, बांध के आया था, अभी कोई 100 साल की आयु बांध रहा है, बांध के आया है, वो आयु उसने पूर्व भोग में बांधी थी, अब 25 साल में ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाता है कि वो तो मर गया, तो हम कहते ऐसा कैसा हुआ, आयु तो उसके परमाणु तो 100 साल के पड़े थे नीचे, तो उसमें वो कट डाउन हो जाते, कट डाउन होते ना, वो सारे परमाणु नीचे के मान लेते ना, अभी कोई एक्सीडेंट हुआ और एक घंटे में उसकी मौत होनी है, तो घंटे में क्यों, कोई 5 मिनट में मरेगा, कोई घंटे में, क्योंकि कदली घात करके उसने घंटे भर के निषेक बाकी रखे, अब कदली घात होने के बाद वहां अंतर्मूर्त तक उसकी आयु भी बंधेगी। हम तो ऐसे नहीं कि तत्काल मर गया, तत्काल मर गया में भी असंख्यात समय चले जाएंगे, क्योंकि कदली घात उसी का होता है जिसने आयु का बंधन नहीं किया है। फिर से देखो, 90 साल का कोई हम मनुष्य इमेजिन करते, तो उसने फर्स्ट उसका आयु का बंधन का अवसर कब आएगा, 60 साल के बाद एक अंतर्मूर्त में आयु बांधेगा, अब वो ऐसा जो 25 साल में 50 साल में कदली घात से मर सकता है, पर मान लेते ना 60वें साल में, उन्हें 60 साल पूरे हुए, उसने आयु बांधी, अभी उसकी आबादा कितनी रहेगी, 30 साल, अब वो आबादा कट डाउन नहीं हो सकती, अब वो 30 एक जिसने आयु बांधी ना 60वें साल में, और 90 साल का वो होने वाला, यानी उसने आयु के बंद इतना करके आया था, वो ने सत्ता में 90 साल की आयु थी, अब उसने 60वें साल में नेक्स्ट भव की आयु बांध ली, अभी उसका किसी भी हालत में मरण नहीं होगा।
हम कहते ना, भले वो कितना भी बेड रिडन है, खाटलो छोड़तो नहीं, केम के ने आयु बंद कर,
कैसा भी एक्सीडेंट हो जावे, कैसे भी कुछ भी हो जाए, वो मरेगा नहीं। पनिशमेंट क्या है कि देखो, जीना या मरना या ये कोई पनिशमेंट नहीं है, उसके वहां रहने की योग्यता है, हम उसके संयोगों की तरफ देख करके, ये मर जाए तो अच्छा, ये मर जाए तो अच्छा, ये कहना भी, या हम अधिक जिए तो अच्छा, हम जल्दी मरे तो अच्छा, हे भगवान हमको उठा ले, ये क्या है, ये सब मिथ्या मान्यता है, यानी यहाँ पर भी जीना है, और हम तो अनादि अनंत जीते ही आए हैं और जिएंगे, तो वो मनुष्य भव में रहा क्या, अन्य पर्याय नहीं गया क्या, बात ही की है। अरे छूटा क्या, अगर ऐसे ही संकलेश में मरता है तो वो छूटा कहेगा, वो नीच गति में चला जाएगा, और वहाँ उसका आशा था अगर उदय होना है तो वहाँ पर भी चलता है,
लोग क्या समझते हैं, अभी इस भव में उसके हम कहते हैं असाता वेदिनी कर्म के चल रहा है, बीमार है, कुछ भी है, और वो मरकर समझो अन्य भव में जावे, तो अन्य भव में गया तो उसका असाता वेदिनी का कर्म का उदय टूटेगा ही, खत्म ही होगा, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ से नरक में गया तो उधर तो, और जो आत्मघात करते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं, सुसाइड, तो उसके तो खोटा ही कर्म चलेगा, इधर से मन जाके पंचेंद्रिय जीव का उसने खून किया, मान लो मार दिया उसको, तो नरक में जावे, नरक में तो और तकलीफ है,
यानी यहाँ तो उसको लगता है कि मैं मरूंगा तो इसमें से छूटूंगा, अरे पर वहाँ छूटने की भी फैसिलिटी नहीं, नरक में आत्मघात नहीं होता, भले वो मरण जैसा प्रसंग हर बार 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 बनता रहता है।
नहीं नहीं, वो जीव पंचेंद्रिय जीव की हत्या कर रहे हैं ना, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं।
स्वयं की हत्या तो
अभी जैसे हमने पेपर में कुछ दिन पहले पढ़ा, 11वें माले से कोई स्त्री ने ऊपर से हॉस्पिटल से जंप मार के जान दी, तो वो तो बहुत बीमार थी।
वो क्या है, वो ऐसा लगता है छूट जावे, हमको भी तकलीफ, दूसरों को भी तकलीफ, चलो मैं इसको, ऐसे सोचना ही मूल में गलत है। उसने अपने को क्या माना, इतना ही मैं हूँ,
पर ये
और ये बाकी संयोगों के कारण मैं दुखी हूँ, रोग के कारण मैं दुखी हूँ, दूसरे मेरे को पीड़ा देख रहे इसलिए मैं दुखी हूँ। वो दुखी तो अपनी कल्पनाओं से, इलाज कहाँ करना है, अपने में करना है, वो तो सोचता नहीं है। और फिर बस ये पर्याय छूटी तो मैं छूट जाऊंगा, ऐसा लगता है, क्या करें। परंतु वो ऐसा कषाय के आवेश में है, ऐसा कोई उसको समझाएगा तो भी नहीं समझेगा, नहीं समझेगा। जिसका अभ्यास है हाँ, उसको विचार अगर करता है या उस समय कोई उपदेश देता है तो उसको हाँ ख्याल है कि नहीं 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 मैं भूल कर रहा हूँ। देखो शास्त्र में एवो लेख आवे, ये अनुपूर्वी की बात मैंने अभी की थी ना, अनुपूर्वी नामनी एक नाम कर्मनी प्रकृति छे। अनुपूर्वी समझते, जैसे तिर्यंच गति का उदय, तो तिर्यंच गत्यानुपूर्वी का भी कब होता है, एक भाव से मरकर जो अन्य भाव में जाता है, और विग्रह गति में, विग्रह गति करते हैं मोड़ वाली गति, वो इश्यू गति एक समय में पहुंचता है उसको नहीं है, वहां उसको अनुपूर्वी का उदय नहीं है। तो अनुपूर्वी का उदय कहाँ है, वो मोड़ वाली गति में, यानी वो मोड़ वाली गति में, उसको क्षेत्र विपाकी कर्म कहते हैं। गत्यानुपूर्वी है, अनुपूर्वी का अर्थ गत्यानुपूर्वी। जैसे कोई मनुष्य मर गया और अभी देव में जा रहा है, मान लेते ना दो मोड़ लेके वो अपने जन्म स्थान पर पहुंचने वाला है, तो वो दो समय में जिस रूप से ऐसे वो जाने वाला है, वहां तक उसका गत्यानुपूर्वी का, देव गत्यानुपूर्वी का उदय होता है, इसलिए उसको क्षेत्र विपाकी कहते हैं। उतने ही क्षेत्र में उसका उदय है। बांधती हर समय, जब जब कोई भी गति बनती है तो उसकी गत्यानुपूर्वी बनती बनती नियम से, और उदय मात्र वो विग्रह गति मोड़ वाली गति में होगा। अब कोई जो मोड़ वाली गति से नहीं जाएगा तो उसका उदय भी नहीं होगा, वो खेती रहेगी अन्य प्रकृति रूप से, उदय मात्र वहीं पर होगा। देखो शास्त्र में एवो लेख आवे, अनुपूर्वी नामनी एक नाम कर्मनी प्रकृति छे, जेम बड़द ने नाथ नाखे, नाथ समझते हाँ, अने खेचे, एम अनुपूर्वी प्रकृति नरक में लई जवा खेचे छे, देव में लई जवाने, मनुष्य में लई जवाने खेचे छे। ऐसे कहते हैं, ऐसे कहने की पद्धति है, वो उसको वहां ले जाती। अहीं तो कहे छे के अनुपूर्वी एक चीज हती, ए बताई, बस उसका उदय है वहां पर, इतनी बात है। वो जीव को ले जाता है ऐसी कोई बात नहीं, बाकी तो ते समय पोतानी जे गति करवानी योग्यता रूप पर्याय छे एने लईने गति करे छे। एक्चुअली गत्यानुपूर्वी का कार्य क्या होता है, देखो यहाँ मनुष्य के आकार था, अब यहाँ विग्रह गति में गया, देव में जाने वाला है, अब देव का आकार कब धारण करेगा, जब वहां उपपाद शैया पर पहुंचेगा तब, क्योंकि संस्थान नाम कर्म का उदय तब चालू हो जाता है। पूर्व का मनुष्य में संस्थान नाम कर्म का उदय था, अभी वो तो विग्रह गति में आया, अभी देव पर्याय चालू हो गई, अभी नया संस्थान नाम कर्म का उदय चालू हो गया, कब, शरीर धारण करने के पहले समय से, तब तक क्या होगा, मनुष्य का आकार कायम रहेगा। अब कुत्ता मरकर देव में जा रहा है तो वहां देवगत्यानुपूर्वी में क्या, वो कुत्ते का आकार कायम रहेगा, परंतु उसका उस क्षेत्र में उदय है तो कहते वो देव में ले गया, नरक में ले गया, ये कहने की पद्धति है। तो कहते वो अनुपूर्वी के कारण उसका गमन हो रहा है, वो जीव को ले जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। आहा, घणो भेद ज्ञान परथी, तो भेद ज्ञान, पर देखो ये तो पर से तो जुदा है ही, कर्म से तो बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि कर्म का एक एक परमाणु जुदा है आपस में, तो जीव से तो वो जुदा है ही है। अब कहते ये भेद ज्ञान किससे, पर चीज से, परथी तो भेद ज्ञान, वो तो ठीक, पर पोताना तरण मा, ये तरण कौन से उमा बेन, बहुत अच्छा, द्रव्य गुण और पर्याय, पोताना तरण मा पण जुदा जुदा अतद भाव, क्योंकि हर एक का भाव अपना अपना अलग, यानी अपना अपना जुदा जुदा भाव है, उसको हम कहेंगे आपस में उनका अतद भाव है, કોઈ દી સાંભળી ઉપર ન હોય, વાડામાં જન્મ્યા એટલે માને કે અમે જૈન છીએ, અને જૈન પરમેશ્વર તત્વની વાત શું કહે છે એની ખબર ન હોય. ક્યાં કહેતે અપને કો જૈન કહેલાતા હૈ, પણ જૈન પરમેશ્વર સર્વજ્ઞ વિતરાગી તીર્થંકરોને ક્યાં વાત બતાવી હૈ, ઉસકા તો કુછ અતા પતા હી નહીં. આ હા હા, નવરાશ નહીં ને, નવરાશ નહીં ને, નવરાશ એને ફુરસત નહીં ઉસકો. ક્યું અપને કો મનુષ્ય માન કર રખા હૈ, ઓર યે મનુષ્ય ભાવ મેં મુજે ક્યાં કરના હૈ, ઉસકે સારે ઉસને પ્લાનિંગ બના દીએ કલ્પના મેં કે યે કરૂંગા તો મેં સુખી હો જાઉંગા. ધંધો કરવો, બાયડી છોકરા સાચવવા, વેપાર સાચવવો કે આ સમજવું, ન સાચવે તો નુકસાન થઈ જાય. ક્યાં કહા વો બહાર કરને તો ચોપટ હો જાયગા, તુમ્હારે સ્વાધ્યાય મેં હમ બેઠેંગે તો ક્યો ભાઈ હમારી ફેક્ટરી ચોપટ હો જાયગી. મોક્ષ પૂછતે વેપાર ન કરે તો દુકાનો બધી બંધ થઈ જાય. કોણ કરે એ મતલબ એ વાક્ય કોણ કરે એ સમજતા હૈ, માનતા હૈ મેં વ્યાપાર ધંધા કરતા હું પૈસા લાતા હું, તો કે તે કોણ કરે. એક એક પરમાણુ સ્વતંત્ર હૈ, એક એક દ્રવ્ય સ્વતંત્ર હૈ, એ તો જડની પર્યાયના સમયે તે પર્યાય થશે. એ પરમાણુના પર્યાયમાં જે રીતે ગતિ થવાની તે પર્યાય થશે. એ પર્યાય બીજો જોડે એને બીજો સાથે છે એનાથી ત્યાં પર્યાય થાય છે એમ તો છે જ નહીં. બીજો સાથે છે એને નિમિત્ત હૈ એટલે વહા વો પર્યાય હોતી હૈ એસા બિલકુલ નહીં.
યાને મેં કેશ પે બેઠતા હું તો ધંધા બરાબર ચલતા હૈ, હા વો
ગલ્લે પર મેં બેઠતા
હું તો સાથે હોય તો એ પર્યાય થાય નથી.
ઓર કહેતા ભી દેખો નહીં કૈસા હોતા હૈ, મેં બેઠતા તો કૈસા પૈસા આતા હૈ, હા હમારા ભાઈ બેઠતા તો નહીં આતા હૈ. વો પરમાણુ કે આને કી યોગ્યતા નહીં થી, પરંતુ એ આગે ક્યાં માનતા હૈ, યે તો પૈસા જ્યાદા આના વો અચ્છા, ક્યોંકિ મેં વો મેં પણ આ ગયા, મેં બેઠતા તો જ્યાદા આતા હૈ, તો જ્યાદા આતા હૈ ને હમ કુછ અધિક કરતે હૈ, યાને વો પરકા કરતૃત્વ પના બેઠ લેકર બેઠતા હૈ. યહી બાત વો અંદર પડી ગઈ, જો જ્યાદા પૈસે હો ગયે તો મેં સુખી, ક્યોંકિ પૈસા અધિક આતા હૈ તો ક્યું ખુશ હો જાતા હૈ, ગલગલી હોતી ને, તો ઇતના નફા હુઆ ઇતના ફાયદા હો ગયા. સંયોગ ક્યુંકિ દૃષ્ટિ પૂરી સંયોગ પર પડી ઓર ઉસે મેં સુખી હો જાઉંગા માનતા, યે કહે રહે. હા શરીર મેં હું તો શરીર કે અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતા ઇસી કો દેખતા રહેતા હૈ. દેખો એ પર્યાય બીજો જોડે છે એનાથી ત્યાં પર્યાય થાય છે એમ તો છે જ નહીં. દેખ ઇતના બિલકુલ જીસકો કહે લંકે કી ચોટ, બિલકુલ ઇતના દૃઢ સિદ્ધાંત દૃઢ નિર્ણય હોના ચાહીએ. પણ એની જે પૈસો લેવાની દેવાની આદિની પર્યાય થાય છે એ પર્યાય તે દ્રવ્ય નથી. ક્યાં કહા વો જો પર્યાય હો ગયો કિસકી પરમાણુ કી ભી, પૈસા આતા હૈ જાતા હૈ વહા પર ભી પર્યાય હૈ વો દ્રવ્ય નહીં, અને પર્યાય તે ગુણ નથી. આ હા હા આવી વાતો છે. સૂક્ષ્મપણે વિચાર કરવો જોઈએ ભાઈ. યહાં જો સિદ્ધાંત એક એક બતા રહે હૈ, અલૌકિક સિદ્ધાંત બતા રહે, તો કે તે સૂક્ષ્મપણે ઉસકા વિચાર કરના ચાહીએ, ક્યુંકિ ઉસકે બિના તો નિર્ણય હોગા નહીં, ક્યુંકિ કેવલ ઉન્હોને બતા હમને માન લે એસે થોડા હી હોતા હૈ, ક્યુંકિ જો હમારે અભિપ્રાય પડે હૈ અંદર તો એ સૂક્ષ્મતા સે અભ્યાસ કરેંગે તો ગહેરાઈ સે હમારા વો સહી નિર્ણય હો જાયેગા. આ તો પ્રભુનો માર્ગ છે, પ્રભુનો માર્ગ, પ્રભુને બતાયા હુઆ ઓર પ્રભુ હોને વાલા, પ્રભુ હોને કા માર્ગ, પ્રભુનો માર્ગ ને તીર્થંકરોને બતાયા હૈ ઓર ઉસ માર્ગ પર ચલકર હમ સ્વયં ભગવાન બનતે. સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથે જ્ઞાનમાં જોયું એવું કહ્યું છે. છે ત્રીજો પેરેગ્રાફ. વળી એક આત્માનો જે હયાતી ગુણ છે, હયાતી ગુણ એને અસ્તિત્વ ગુણ સત્તા ગુણ, એક આત્માનો જે સત્તા ગુણ છે તે આત્મદ્રવ્ય નથી, ક્યુંકિ એ ગુણ હૈ વો દ્રવ્ય નહીં, ગુણ હૈ વો પર્યાય નહીં. ઈ એક જ ગુણ આત્મદ્રવ્ય નથી, હયાતી ગુણ સિવાયનો જ્ઞાનાદિ ગુણ નથી. ક્યાં કહેતે એક સત્તા ગુણ હૈ વો ઉસકો છોડકર અન્ય અનંત ગુણ ગુણ નહીં હૈ, सत्ता गुण अनंत ज्ञान गुण है क्या? सत्ता गुण सुख गुण नहीं है, सत्ता गुण वीर्य गुण नहीं है, इसलिए यहाँ क्या कहा? जो सत्ता गुण है वो उसके बिना अन्य ज्ञानादि गुण न थी, क्योंकि ज्ञानादि गुण अन्य है, सत्ता गुण अन्य है, क्योंकि हर एक का नाम जुदा, लक्षण जुदा, प्रयोजन जुदा। सत्ता सत्ता गुण छे, पण सत्ता सिवायना जे ज्ञान आनंद गुण छे ए सत्ता गुण नथी। जैसे सत्ता गुण है वो द्रव्य नहीं है, वैसे सत्ता गुण है वो अन्य अनंत गुण नहीं है। सत्ता गुण थी ज्ञानादि गुण बधा जुदा छे, एक एक गुण जुदा जुदा है, हर एक का भाव जुदा तभी कह सकते हैं कि जो भिन्न, उसका लक्षण जुदा है, उसका कार्य जुदा है। प्रवचन सार वाँचू छे कोई दी? नवराश क्या छे? वाँचे तो आम समझाए, केवल पढ़ने से नहीं समझ में आता, ये भी बात है। इन्होंने कितना एक एक को खोल कर बताया, ये तो पढ़ता है तो खाली पढ़ जाता है। मुमुक्षु कहते आपनी हाजरी माँ बराबर समझाए छे। गुरुदेशी क्या कहते? हाजरी तो पोतानी छे एमा समझाए छे। तो ज्ञान गुण की पर्याय वो उसके अपनी योग्यता से हुई है, वो द्रव्य है इसलिए भी नहीं है, ये तो कहीं नहीं मानने है।
यहाँ स्वामी जी को थोड़ा सा मस्का लगाने के लिए बोलते आपके हाजिरी में समझाए, तो उसको भी ऐसा उड़ा दिया।
तावर तो उनके पास उत्तर तो होता ही,
हाजिरी तो पोतानी छे,
पोतानी छे एमा समझाए छे, वो समझने रूप कार्य कहाँ हुआ है? पर द्रव्य बीजा द्रव्य जिसको उसकी है वहाँ मौजूदगी है, कौन बीजा? स्वामी जी, परंतु समझने वाला स्वयं की अयोग्यता से समझा।
मैं तो ये कहूँगा कि रामजी भाई का ये प्रश्न होना ही चाहिए,
बिल्कुल।
और वो तो LLB तो थे, वकील थे,
उस जमाने
और हमारे स्वामी जी तो कितने, पांचवी या
छठी
क्लास तक पढ़े थे,
छठी क्लास तक।
वो इतना जवाब हाजिरी एक मिनट के अंदर, रुके भी नहीं, यानी कितना उनके ज्ञान का उगाड़, क्यों उनके तो तत्वों का बेस इतना जोरदार था।
खाली ज्ञान का उगाड़ा नहीं, वो इतनी बिल्कुल निर्णय दृढ़ता है अंदर, एक एक तत्व संबंधी, कहीं कोई बोल दे और इन्होंने इन्हें मान लिया, ऐसा नहीं होता था।
डिग्री मिलना कोई ज्ञान का उगाड़ नहीं है, ये मैं बताना चाहता था।
डिग्री से क्या, वो तो जो रटा रटा है तो हम वहाँ रट दे और वहाँ उत्तर लिख के आते हैं और हमको सर्टिफिकेट मिल जाता है। मुक्षु ने तो पण निशाळे जावू पड़े छे ने, अने भरे स्वयं की हाजिरी में समझता है जीव, फिर भी स्कूल में पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज में तो जाता है। पूज्य गुरुदेव श्री, निशाळे जाय छे कोण? जीव द्रव्य नी एवी पर्याय होय तो जाय, शरीर नी पर्याय नी योग्यता होय तो शरीर पर्याय जाय। क्या कहा? जीव अपनी योग्यता से और शरीर अपनी योग्यता से होने वाली हो तो जाता है, ये कह रहे। ए मास्टर पासे जाऊं छे माटे इने लईने गयो छे, शरीर ने लईने गयो छे, अने शरीर आत्मा ने लईने त्यां गयो छे एम नथी। मुमुक्ष कहते निशानो दाखलो एटला माटे आप्यो के अमने आपनी पासे आवू पड़े ने, आप ज कहो छे के आ कोलेज छे, तो आपके यहाँ आए बिना हमको नहीं समझता है, ये कह रहे। पूज्य गुरुदेशी, निमित्त थी तो एम कहवाए ने, ये निमित्त की अपेक्षा से ऐसा कहने कथन होता है, पर कथन होने पर भी वो ज्ञान और मान्यता बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। हमारे धूड़ी निशानो मास्टर हतो, धूड़ी निशान समझते है? पहले के जमाने वो स्लेट पाटी नहीं होती थी, वो तो धूल में वो तो अक्षर अंक सब लिख के पढ़ाते थे, वो तो धूरी निशान। त्यारे 6 वर्ष की उम्र थी, पहली धूरी निशान में जाता, पची पहली चोपड़ी में जाता। धूरी निशाने धूल में एकड़ो करावे। अच्छा, ये पहली चोपड़ी के पहले वाली, ये हमारे KG क्लासेस थे, ऐसा कुछ होगा। धूल में एकड़ो करावे नहीं, वो धूल में ही वो तो लिखने को एक बे ऐसा वो अंक या अक्षर बताते थे। धूड़ी निशाने धूड़ मां एकड़ो करावे, एने आम पैसा नहोता, कहीं सारू नरसू होय दाड़ो होय लग्न होय तो इन्हें आपे एटले इन्हें चाले क्या कहते हैं उनकी कोई फीस वगैरह नहीं होती थी तो कोई प्रसंग में कुछ दे दिया उसको तो चलता जाता चलता था। पहले जमाने तो ऐसा ही था ना वो क्या कहते बारह क्या ये पद्धति थी ना कि कोई किसी को पैसा नहीं देता था नहीं उसका नाम क्या है नहीं नहीं मराठी में कुछ नाम है उसको हाँ बारह बलुतेदार कहते थे नहीं हाँ यानी अभी शिक्षक ने पढ़ाना है वो किसान उसको अनाज देंगे ये तो मिट्टी जो कुछ कुम्हार है वो घड़ा दे ये इससे जो सब्जी वगैरह पकाता है वो दे आपस में इसी की लेन देन चलती थी बार्टर सिस्टम ते धूरी तो पैसा नोता कई आपे तो चाले छोकरो होए એટલે એનું કામ ચાલે એ શીખવતા જડભરત માસ્તર હતો એનો છોકરો સાધારણ ભણેલો એકડે એક ધૂળમાં શીખવે અહીં તો કહે છે કે આંગળીને લઈને એ એકડો અંદર થયો નથી વો ધૂળમાં જો ઉંગલી સે જો અંક બનાતે થે વો ઉસકે કારણ નહીં થા ધૂળને આંગળી અડી નથી આવી વાત પ્રભુની વાત આ સત સત છે તેને સત તરીકે જાણવું જેવી રીતે સત છે તે રીતે સત્યને સત્યપણે જાણવું ક્યાં કહા જૈસે હૈ વૈસા જાના તભી તો હમ ઉસ જ્ઞાન કો સહી જ્ઞાન કહેંગે નહીં તો જ્ઞાન કો સહી કોણ કહેગા સતને અસતપણે ગોટા વાળશે કરતે ગયા તબ ગડબડી કુછ ગોટાળા કરેગા તો 84 ના અવતારમાં રખડવું પડશે મરી જશે આહાહા અહીં ખમા ખમા થતું હોય ક્યોકી પૈસે વાલા હૈ તો નોકર ચાકર હૈ ઓર સબ ઉસકે સેટ સેટ કરતા હૈ રાજા કો એકદમ તો કહેતે ખમા ખમા થતું હોય 5-25 કરોડ રૂપિયા હોય આહાહા ઈ મરીને ભાઈ ભૂનને કૂંખે જાય માંસ આધી ન ખાય દારૂ ન પીએ તો ભૂનને કૂંખે જાય એને એવું તિર્યંચ હોને વાલા હૈ નરક મેં નહીં જાયગા પરંતુ તિર્યંચ હો જાયગા ભૂન યાને વો ડુક્કર ડુક્કર પિગ યહાં લિખા ને અને વિષ્ઠા ખાય આહા બાપુ એ તો વો તો દેખ કર ભી ઘૃણા આતી હૈ તો યહાં તો ઉસ પર્યાય મેં ઉસકો તો વો મીઠાસ લગતી ઉસકે અંદર તભી તો ઉસકે પીછે દોડતા હૈ ને યહાં તો જો કોઈ કરોડપતિ થા માન લે છે વહા જાને પર અપને કો વૈસા હી માનતા હૈ ઉસ પર્યાય હમે એસા એસા લગતા હૈ ઉસકો તો વહી અચ્છા લગતા હૈ હા એક દો બાપુ એવું અનંતવાર થઈ ગયું છે અભી હમ આપ અભી ઉસકો કિસી કરોડપતિ કી વાત આતી તો એસા એસા લગતા હૈ અરે હમ સારે અનંતો બાર એસે એસે પર્યાય મેં જાકે એસે કોઈ પર્યાય નહીં છોડી કી જા નહીં અનંતો બાર क्योंकि अनादि कहते किसको ये इसका भाव वासन नहीं होता है ऐसे भव परावर्तन एक एक समय से बढ़ते हुए सारे भव एक एक अलग अलग योनियों में कितने बार भटके हम क्योंकि अभी हम है उसका अर्थ है कि हम अनादि से है ही है तो है तो किस पर्याय में घूमे हम अभी तो हम मनुष्य हाँ बहुत अच्छा है इतना लगता है पर अगर ऐसे ही योनियों में नहीं जाना है और भव का कंटाला आ गया हो खरे कर तो एक ही रास्ता है कि अपने को पहचानना पड़ेगा और ये सब वस्तु की स्वतंत्रता को जानना पड़ेगा द्रव्य गुण पर्याय क्या बात है यहाँ क्या लिखते हैं देखो एवं अनंतवार थई गयु छे आहा एने दीर्घ विचार कर्यो नथी दीर्घ सूत्री थयो नथी क्या कहते हैं बस हाँ दूरदृष्टि नहीं है क्या कहते हैं देखो हम जो है पढ़े लिखे है मान लेते जिसको हम मान लेते हैं अपने को थोड़ा विचार करते हैं अपनी आमदनी का विचार करते हैं थोड़ा अपने अड़ी अड़चन के लिए कोई पैसा बाजू रख लेते हैं आपने देखा होगा ये जो रोजगार होते हैं ना, रोज रोज के काम करते हैं, जिनकी रोजी रोटी होती है, मजदूर है अन्य भी कोई, वो पैसा कमाते हैं जो है वो तो उसी दिन खर्चा, बिल्कुल आगे का कोई विचार नहीं। ये कहते ऐसा ही यहाँ हुआ, अपने को मनुष्य ही मान लिया आज पूरा, आगे के भोग का कोई विचार नहीं है, वो वैसा ही है। हम तो उनको कोसते क्या क्या कर रहे हैं, सारा पैसा खर्चेगा, ऐसा ही उसने पैसा मिल गया, उस दिन दारू पी ली खुश। अब ये क्या कर रहे हैं, दीर्घ सूत्री थयो नथी, एकलो वर्तमान मां ज रोकाई गयो बस। हाँ भले उसका वर्तमान जो मनुष्य भोग पूर्ता वर्तमान है, परंतु उसने भविष्य का कोई विचार ही नहीं किया। कौन सा ये सब मिला है, तीर्थंकर के समोसन में जाके बैठा है, परंतु उसने उसका सही ग्रहण नहीं किया, आत्मसन्मुख कभी नहीं हुआ। शास्त्र का अभ्यास किया अनंत बार, अरे द्रव्यलिंगी मुनि हुआ, इन्हें ग्रहित मिथ्या तो छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था।
ऐसा कहते इसका संयोग मिला, एनाती हूँ वड़ियू, जब तक हम अपने स्वरूप में एकाग्र नहीं होते तो ये सब मिलकर भी कुछ
होता ही नहीं ना। ये बाहर संयोग मिलने से क्या हुआ, अभी भी काम क्यों नहीं हुआ, नहीं किया इसलिए नहीं हुआ नहीं किया इसलिए नहीं हुआ क्या कहते कहते एकलो वर्तमान मां ज रोकाई गयो बस, परद्रव्य थी भिन्न छू एनो निर्णय करियो नथी, અને અંતરમાં દ્રવ્ય તે ગુણ નહીં અને ગુણ તે પર્યાય નહીં એનો પણ નિર્ણય કર્યો નથી। इसका નિર્ણય કરને કે બાદ વો ગુણ કા ભી ઓર પર્યાય કા ભી લક્ષ્ય છોડકર દ્રવ્ય મે દ્રષ્ટિ કરની પડેગી, પણ પહેલે મે પહેલે નિર્ણય જરૂરી હૈ કે પહેલે મે પહેલે દ્રવ્ય ભી હૈ ગુણ ભી હૈ પર્યાય ભી હૈ ઉસકા નિર્ણય કરેંગે, ઓર ફિર વો દ્રવ્ય હૈ વો ગુણ નહીં ગુણ હૈ પર્યાય નહીં ઉસકા ભી નિર્ણય કરેંગે, ઓર નિર્ણય કરને કે બાદ વો દ્રવ્ય હૈ ઉસકી દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ કરની। एक आत्मा नो जे हयाती गुण छे, जो अस्तित्व गुण है ते आत्मद्रव्य नथी, और हयाती गुण छे ते हयाती गुण सिवाय नो ज्ञानादि गुण नथी, ऐसा हर एक में के साथ लगा लेना। सत्ता गुण छे ए ज्ञान गुण नथी, सत्ता गुण छे दर्शन गुण नथी, अने ते सत्ता गुण छे ते समय दर्शन ने पर्याय आदि नथी, यानी गुण है वो पर्याय नहीं। અહીં આ સિદ્ધત્વની પર્યાય લીધી છે, પણ સત્તા ગુણ છે એ સમ્યક દર્શનની અને સમ્યક ચારિત્રની પર્યાય નથી। જ્ઞાનગુણની જે પર્યાય છે એ સત્તાગુણની પર્યાય નથી, અને સત્તાગુણની પર્યાય તે જ્ઞાનગુણની પર્યાય નથી, અને એક ગુણ કી પર્યાય ભી દૂસરે ગુણ કી પર્યાય નહીં। પહેલે મેલે ગુણ કો લિયા વો દ્રવ્ય નહીં હૈ, ગુણ હૈ વો અન્ય ગુણ નહીં હૈ, ઓર ગુણ હૈ વો પર્યાય નહીં, यानी सत्ता गुण है वो सत्ता गुण की पर्याय भी नहीं है, और सत्ता गुण है वो तो ज्ञान आदि की पर्याय भी नहीं है, सत्ता की पर्याय वो भी अन्य पर्याय नहीं है। ये सबको आपस में अतद भाव में ले लेना उसको। एक साथ ही सम्यक दर्शन ने ज्ञान उत्पन्न था, क्या कहा, ये सभी अनंत गुणों में सम्यक अंश प्रकट हो जाता है। अरे एक साथ अनंता गुणों अंश व्यक्त प्रकट था, व्यक्त था यानी वो तो सम्यक रूप से तो होता ही होता है, प्रकट हो जाता है। प्रकट होता है ना, क्यों, अनंत गुणों का अखंड यानी एक रूप ऐसा जो रस है, आत्मिक रस जिसको कहेंगे, अतीन्द्रिय आनंद उसका अनुभव हो जाता है। इसलिए कहते एक साथ है अनंता गुणों अंश व्यक्त, इतले व्यक्त था यानी प्रकट था, सर्व गुणांश ते संकित, ए अनंत गुणना पिंडनो जहाँ दृष्टि ने अनुभव थयो। अनंत जो अनंत गुणों के भेद पर लक्ष्य नहीं है, अनंत गुणों का अभेद एक पिंड, पिंड का है ना, तो वो अखंड को लक्ष्य किया, द्रव्य को लक्ष्य किया उसने। ए अनंत गुणना पिंडनो जहाँ दृष्टि ने अनुभव थे, एक ही समय में है अनुभव, यानी वो अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हुआ है, अनंत गुणों का एक रूप जो एक रस उसका अनुभव हुआ है, तो जेटला गुणनी संख्या छे तेनो एक अंश व्यक्त थयो, यानी वहाँ दृष्टि हुई और अनुभव हुआ, उसमें सभी का व्यक्त अंश मिलकर वो अनुभव कहेंगे उसको हम। पण एक पर्याय छे ते बीजी पर्याय नथी, वहाँ अनंत गुणों की एक एक पर्याय वहाँ उसमें शामिल है, परंतु फिर भी प्रत्येक पर्याय जुदी जुदी है। ये कह મુમુક્ષુ કહે તે છતાં સત્તા દ્રવ્યગુણ પર્યાય ત્રણેયમાં વ્યાપેલી છે. કેવું તો પ્રદેશ અભિન્ન હે ને, એટલે કહેંગે. પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી કહે તે સત્તા સત્તામાં વ્યાપી છે. દ્રવ્ય સત સત્તા તરીકે, ગુણ સત સત્તા તરીકે, એ આવ્યું ને એ ગાથા તો ચાલે છે. એ ગાથા છે સદવમ સચ્ચ ગુણો સચ્ચેવય પજ્જવો. સત દ્રવ્ય તે ગુણ નહીં અને સત ગુણ તે સત દ્રવ્ય નહીં, સત ગુણ તે સત પર્યાય નહીં. જીની વાત છે ભાઈ, એ તો અધિકાર જે આવે છે ત્યારે તેનું સ્પષ્ટીકરણ થાય. એને અલગ અલગ અપેક્ષાઓને અલગ અલગ જગ્યાએ જો કથન આતા હૈ ઉસે હમે સહી નિર્ણય તક હમ પહોંચ સકતે હૈ. આહા હા, સત્તા નામનો ગુણ છે અને અહીંયા સંકિત પર્યાય થઈ તો એ સત્તા ગુણની પર્યાયથી સંકિતની પર્યાય નથી. ખ્યાલમાં હતી ને કે હરેક ગુણ કે પર્યાય જુદી જુદી હૈ, વો એક કે કારણ દૂસરી હૈ એસા નહીં હૈ. હમ એસા ભી કહેતે ને વો સત્તા ગુણ હૈ ઇસલિયે જ્ઞાન ગુણ હૈ કે નહીં, આપણે સે સંકિતની પર્યાય, સંકિતની પર્યાયને લઈને છે એને, વો સ્વયં અપને સે હૈ, સત્તા ગુણને લઈને નથી. બીજી રીતે કહીએ તો શ્રદ્ધાગુણ જે ત્રિકાળ છે, આત્મા જે ત્રિકાળ છે અને શ્રદ્ધાગુણ છે, તો શ્રદ્ધાગુણ છે એ આત્મદ્રવ્યનો શ્રદ્ધાગુણ. આત્મદ્રવ્ય એ શ્રદ્ધાગુણ રૂપે નથી અને શ્રદ્ધારૂપે ગુણ છે અને એની પર્યાય છે તે બીજા ગુણને લઈને સમયદર્શનની પર્યાય છે એમ નથી. પણ સમય દર્શન હુઆ એટલે સમય જ્ઞાન હુઆ ના, તો કહેતા એસા નહીં. હરેક ગુણ કી પરે અપને સે હુએ, કોઈ ગુણને કોઈ ગુણ સહાય નથી, બીજા દ્રવ્યને બીજા દ્રવ્યની સહાય તો નથી. ક્યાં કહા, એક ગુણ ભી દૂસરે ગુણ કા કોઈ સહાય નહીં કરતા. એક દ્રવ્યને બીજા દ્રવ્યની સહાય તો નથી, પણ આત્મામાં અને પરમાણુમાં જે અનંત ગુણ રહ્યા છે તો એ એક ગુણ બીજા ગુણને સહાય નથી. એને ઉસમે કોઈ જો હેલ્પ કરતા હૈ, મદદ અસર કરતા હૈ, ઉસકા પરિણમન થોડા બના દેતા હૈ, તો કહેતે એસા નહીં હૈ. તો કાલ દ્રવ્ય કે કારણ તો સભી દ્રવ્ય પરિણમતે હૈ ના, ઉસકી હયાતી ઉસકી પ્રેઝન્સ હૈ જો બીજી ચીજ કહેતે. પ્રત્યેક દ્રવ્ય સ્વયં પરિણમિત હોતા હૈ તો ઉસમે કાલ દ્રવ્ય કો નિમિત્ત કહેને મેં આતા હૈ. પણ કાલ દ્રવ્યને ઉનકા પરિણમન કરાય એસા નહીં. હા હા હા, એનું અસ્તિત્વ સત્તા ભિન્ન ભિન્ન છે. કિસકા, એક એક ગુણ કી સત્તા જુદી જુદી, એક એક ગુણ જુદા જુદા. સંકિતની પર્યાય પ્રકટ થઈ માટે સમય જ્ઞાનની પર્યાય પ્રકટ થઈ માટે અનંત આનંદનો સ્વાદ આવ્યો, એ સમ્યક દર્શન પર્યાય થઈ માટે આનંદનો સ્વાદ આવ્યો એમ નથી. ક્યાં કહા, હૈ તો એક હી સમય મેં, ક્યોંકિ વો સ્વાદ આયા તો પતા ચલા કે સમય દર્શન હુઆ, પરંતુ સમય દર્શન કે કારણ સ્વાદ નહીં આયા. અને સ્વાદ આયા ઇસે સંકિત કી પર્યાય હુઈ એસા ભી નહીં. સભી ગુણો કી પર્યાય અપને અપને સે હુગે, સમય એક. યહાં લિખા હૈ ના, એ પર્યાય જુદી છે, દરેક પર્યાય જુદી છે, દરેક ગુણ જુદો છે અને ગુણને દ્રવ્ય જુદો છે. આહા હા, આવું લાંબુ આચાર્યોએ કામ કર્યા છે ને જંગલમાં રહીને. નગ્ન મુનિ, મુનિ તો નગ્ન જ હતા, દિગંબર જ મુનિ હતા. એને વો તો અનાદિશે એસા હિ વસ્તુ કા સ્વરૂપ હૈ. મુનિ તો નગ્ન દિગંબર હિ હોતે હૈ, જંગલ મેં હી રહેતે. શ્વેતાંબર તો એમાંથી 2000 વર્ષ પછી નીકળ્યા. 2000 વર્ષ પછી કિસકે 2000 વર્ષ પછી, પહેલા ના મહાવીર કે બાદ તો 500 વર્ષ માં. વો પછી નહી, પહેલા પહોંચાય ના, 2000 વર્ષ પહેલા નીકળ્યા. પછી કહેંગે તો કિસકે પછી કરના પડેગા, यानी आज से 2000 वर्ष पहले कुनकुन के जमाने में वो नए नए बने थे ना, इसलिए उन्होंने इतना निषेध किया था। जैन दर्शन में तो अनादिथि एकला नग्न मुनिच होए, अनादिथि अनंत काल वस्त्र सहित मुनिपनु ते मुनिपनु नथी। आगामी काल में भी कभी ऐसा वो मुनिपना ही नहीं, वो जैन ही नहीं कहेंगे। मुमुक्षु कहते एना शास्त्र में तो एम लख्यू छे के अमारा माथी दिगंबर निकलया छे, ऐसा वहां लिखा है, क्योंकि नए खोटी सब रचना की तो उसमें लिख दिया कि हमारा ही मूल धर्म है और ये नया निकला करके। गुरुदेव श्री गमे ही कहे नहीं, मानस तो गमे ही कहे, अनादि सनातन सत्य आ छे, एमाथी श्वेतांबर 2000 वर्ष पहला निकलया है ना, यहाँ पर पहला अने पोतानी दृष्टिए शास्त्र बनाव्या, एमा आ बधा गोटा वाळ्या छे। ये सब गड़बड़ घोटाला कर दिया है, यानी कितना जो उसके कई परवर्टेड जिसको कहेंगे ना माइंड, परवर्टेड समझते हैं, परवर्टेड माइंड, परवर्टेड माइंड, मैं इंग्लिश कह रही हूँ, परवर्टेड यानी जो कहें कोई ऐसा जो नहीं परवर्टेड है, दिमाग कोई ऐसा उल्टा सुलटा हो गया है जिसको पागल भी ठीक, मगर ये परवर्टेड है ऐसे कोई टेढ़ा उल्टा, हाँ ऐसा इसको कहते परवर्टेड माइंड। यानी कितने दुष्टता और कितनी घृणा आवे ऐसी बातें कितनी बताई उसने। यानी मूल मार्ग जो ऐसा अद्भुत मार्ग है और उसको इतना विपरीत कर दिया।
देखो आपको उदाहरण देता हूँ, हमारे
जरा नजदीक पकड़,
हमारे पहचान के एक भाई थी, उसको पांच क्या बोलते बहुएं थी, तो वो क्या करती थी, एक गोणी अनाज उनके सामने रखे पांचों के सामने, उसके उसमें से कंकर निकाल के अलग करो और मेरे को बताना कौन से कंकर निकाले आपने। तो वो पांचे बहू उसका साफ करके धान कंकर अलग रख के, अच्छा ये आपने सबने निकाला, हाँ हाँ, वो कंकर फिर उसमें डाले, अभी साफ करो। तो ये क्या है, परवर्टेड माइंड है। अभी क्या बोलना आप समझ,
नहीं वो भी जो समझना है वो समझ, हाँ अभी मन में, हाँ अरे कुछ भी मन गढ़ंत दुष्ट, हाँ हाँ। देखो त्या तो लुगड़ा ना पोटला ना पोटला लख्या छे, लख्या छे मेरे उनके शास्त्र में लिखा है। अने अहीं दिगंबर शास्त्रों में तो कहे छे के एक लुगड़ा नो कटको राखे अने मुनिपनू माने तो निगोद में जशे, एने साधु माने तो ए निगोद में जशे, वो स्वयं भी जाएगा उनको मानने वाले भी जाएंगे ऐसा कह रहे। वस्त्र सहित साधुपणू मान छे ए निगोद मां जवाना छे, अने एने जे माननारा छे के आ साधु छे ए निगोद मां जवाना छे। कड़क वात, वो छड़ाला में के ने उपल नाव, उपल नाव समझ रहे, पत्थर की नाव, वो पत्थर की नाव तो डूबेगी, उसको बैठने वाले भी डूबेंगे। तो ये तो स्वयं तो ऐसे खोटे मार्ग पर चलने वाले तो जाएंगे जाएंगे, उसको सही मानकर उनको गुरु मानने, उनको ऐसे जो विपरीत रूप से जो देव मानना, ये सब क्या है निगोद में जाने के।
वो छड़ाला में कौन सी नाव बताएं,
उपल नाव,
उपल, उपल नाम का डायमंड होता है, हीरा
स्टोन है ना, पत्थर
उसमें नाव बना,
अरे कोई भी पत्थर डूबेगा ना वो हीरे वाला होगा या ऑर्डिनरी पत्थर होगा। उपल नाव। कड़क वात बापू आकरू काम बहु, वस्तुनु स्वरूप एम छे, आ तो अनादि भगवान त्रण लोकना नाथ सर्वज्ञ देवे जोयूं जाण्यू एम कहूं छे। पेलू बधु तो कल्पित बनाव्यू, श्वेतांबर लोकए बधा शास्त्रों कल्पित बनाव्या छे, एनी श्रद्धा प्रमाणे तो गृहित मिथ्या दृष्टि छे, उसकी जो मानता है वो गृहित मिथ्या दृष्टि है। और गृहित मिथ्या दृष्टि है और अगृहित छोड़ने की बात करें तो वो कैसे संभव है? आउ आकरू काम पड़े, सौ ने सारू लगाड़ी ने मानस भेगा करवा छे, क्या वो स्त्री को भी मुक्ति मान लिए तो चलो स्त्रिया खुश हो गया, गृहस्थ को भी केवल ज्ञान मान लिया तो चलो खुश हो गया, बस कोई आहार दे दो साधु को या कोई दान दे तो संसार से परित हो गया, ये सब बातें। मानस झाझा भेगा थाए, आहा हा, वो आज के जमाने की बात नहीं, तभी से वो आजकल वो राजनीति में चलता है ना, वोट्स मिलने के लिए जो कुछ खुश करो लोगों को। हाँ, सत्य ने संख्या ने जरूर नथी, सत्य तो त्रिकाण सत्य रूपे छे। ये मानने वाले कम है तो हम क्या करें? अरे तू सत्य है ना, तुझे क्यों चिंता, उल्टे तुझे ऐसा है कि तुम तो बहुत रेयर में से हो कि तुम्हें ये सत्य मार्ग हाथ में आ गया, नहीं वहाँ इतने लाखों जाते वहाँ इनको सुनते कुछ तो होगा अच्छा, तो चलो वहाँ सुनो वहाँ तो सुनो, अरे अभी छोड़ दो, सत्य मार्ग हाथ में आया है तो उसको उस मार्ग पर चलो।
अरे उधर तो 3,000 लोग आते
हैं, अरे 3,000 ले लो, 10,000 ले लो, उसमें क्या है, जहाँ सत्य मार्ग मिलता है वो सही बात है। अहीं तो कहे छे के, देखो ये कल बात आई ना, विस्मय लगता है, कल आपके प्रवचन में आए थे ना, दुनिया की विस्मय लगता है, आश्चर्य करे, कुतूहल तो कर कि इसकी अपनी क्या बात है, ये कुतूहल किसका करता है, अरे यहाँ इतने लोग जाते चलो देखो तो सही, उसका इतना नाम है चलो सुनो तो सही, ये कुतूहल उसको हो रहा है, कोई दूसरी चमत्कार की बातें बताओ वहाँ दौड़ के चला जाएगा। हम पुणे में गए थे, अपना शिविर था तभी, वहाँ कोई तो आए थे दिगंबर मुनि कहने वाले कोई, तो ऐसे उनके हो कि जहाँ वो भोजन करते समय जिस पत्थर पर खड़े थे वहाँ उनके पैर के निशान ऐसे आ गए, तो उसने उसको खोद कर उसका ऐसे दीवार पर लगा दिया, तो पूरे समाज वहाँ लौटते थे उसका दर्शन करना है, मुनि के नहीं वो पत्थर के।
देखो देखो क्या होता है, आप घर पर वो अपने घर में काला पत्थर उसको क्या बोलते हैं,
वही कड़प्पा,
कड़प्पा पत्थर जो है उसके ऊपर नींबू का एक बूंद भी गिर जाए तो वो सफेद हो जाते हैं, तो ये जो कोई विशिष्ट व्यक्ति थी
जाएंगे तो उसका निशान होगा,
वो नींबू का पानी नींबू बहुत पीते और ऐसा गर्मी के दिनों में काले पत्थर पर खड़े हो जाए तो उसको पैर के निशान आते, अरे क्या आश्चर्य, तो वो घर की टाइल तोड़ के ऊपर लगा दी, लोग दर्शन करने को जाओ
टाइल के,
नहीं
टाइल टाइल देखने के लिए, देखो तो सही देखो, ये ऐसा होता है सर, यानी किस चीज का कुतूहल लगता है जीवों को। उल्टी जगह पर वो तो वो सही मानकर दिमाग लगा रहे, इसलिए उसी का सही अर्थ करने की कोशिश कर रहे, मूल में ही भूल है ना, ये लॉजिक से बिल्कुल सिद्ध है, ऐसा नहीं कि दो पक्ष है ये आपका ये हमारा, ऐसा नहीं है, आप चलो इतने बहरी पूरा करते हैं, ये हो गया ना, सत्य ने संख्या ने जरूर नती हो गई ना, बस यही रुकेंगे, सत्य ने संख्या ने जरूर नती, सत्य तो त्रिकार सत्य रूपे छे, यहाँ तो हो गया, हाँ यही रुकते हैं। 362 चावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तकनं सदा देत हो
నమో సిద్ధానం నమో ఆర్యానం నమో విజ్ఞానం నమో లోయ సర్వసాం నమో సిద్ధానం నమో ఆర్యానం నమో విజ్ఞానం నమో లోయ సర్వసాం నమో సిద్ధానం నమో ఆర్యానం నమో విజ్ఞానం నమో లోయ సర్వసాం నమో సిద్ధానం నమో ఆర్యానం నమో విజ్ఞానం నమో లోయ సర్వసాం